नमो महागंगाय कृष्णाय त्रिशोदे दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका सप्तपंचम गौरांगी जाति आजीविका सर्वतृत्याच जाति निपत्पूर्ण आशादन से
आत्मा की भूख मर गई,
और स्वास्थ्य की भूख शरीर की भूख बढ़ी, जैसे जैसे प्रेम भी मर गया और हृदय हम लोगों का प्रेम बहुत जगत में दुर्लभ है। चैतन्य मात्र का एक प्रधान उद्देश्य जगत में कुछ प्रेम का प्रकार इसलिए नाम के माध्यम से यथाशास्त्र उन्होंने प्रेम का प्रसार, प्रेम में ममता प्रधान, राष्ट्र में ममता है किंतु प्रगाढ़ ममता नहीं है, इसलिए प्रेम भी प्रगाढ़ नहीं है। जितना यह प्रेम प्रगाढ़ होगा ममता उतनी अधिक आएगी और जीव का स्वरूप उतना ही विकसित होगा और शिष्य के ऊपर मिलेगा। अभी से हम लोग संसार के प्रति ममत्व को जहां पर पुस्तकें कम करें आना सकते हैं और परमार्थ के प्रति ममत्व बढ़े। पहले साधन भजन में तो ममत्व हो, उसके बाद में शास्त्र में ममत्व। गुरु जो साधन सिखलाते हैं, वैष्णव लोग जो साधन सिखलाते हैं उनमें ममत्व, भगवान की जो वस्तुएं हैं उसके प्रति ममत्व। मान लिया कि रास्ते में कहीं मोर पंख मिल गया, जो जमीन में पड़ा हुआ है उसके ऊपर में सभी लोग जा रहे हैं आ रहे हैं सारे जा रहे हैं सब उड़ जा रहे हैं, आपने उसको देखा क्या करेंगे? हमने भी ऐसा देखा तो देखकर पैसा लौटे कोई बात नहीं है तो ममता नहीं। यदि उसे उठाकर अपने सिर पर रख लिया, हृदय में रख लिया, फिर उसको रख लिया तो समझा जाएगा कि ये मोर पंख आपका नहीं है किंतु कृष्ण से संबंधित है। कृष्ण से संबंधित है उसमें ममत का होना चाहिए। अरे दूसरा बच्चा ममत का होना चाहिए, ये ममत का इस साधन अवस्था में ही सीखना पड़ेगा। गुरु जी की द्रुति खड़ान को उल्लंघन मत करो, उस पर टायर न डालो, उसका यथाचित सम्मान करो। गुरु जी का चित्र है, वैष्णव का चित्र है, भगवान का चित्र है, उनकी कोई भी चीज हो, ठाकुर जी का कोई भी चीज हो, न तो हमारे को भोग्य है न हमारा है, हमारा आराध्य है, ऐसे समझो। प्रत्येक चीज में अभी से ही साधन करो कि ममता, तब धीरे 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 भगवान में अपनी आराध्य। जब न्याय नहीं सीखेंगे यहां पर उदासीन रहेंगे वहां पर ममता कहां से आएगी? इसलिए ममता साधन में ही प्रगाढ़ होती चली जाए। ममता कैसी होनी चाहिए उसी के लिए कह रहे हैं श्रीमद् भागवत से एक श्लोक। नंद की माँ पर उस ब्राह्मण से और ये महोदय यशोदावा महाभागा पतो जैसा, यशोदा ने दूध नहीं पिलाया, कृष्ण ने पान किया, इतने आसक्त हैं। यशोदा जी का तो कृष्ण पर ममत्व है तो कृष्ण का अपने आप ममत्व है। कृष्ण वैसे आत्मारायण आपका काम है, उनकी कोई इच्छा नहीं, भक्तों का प्रेम देकर के उनका भी प्रेम जग जाता है, ठीक वैसा ही हो जाता है। भक्तों का जब कृष्ण के प्रति ममत आएगा तो उनका भी ममत अपने आप जैसा समन पपऊ पपऊ जैसा स्तन माने क्या
जिसका
स्तन पान किया किसने पान कराया है ये लिखा है पान इतनी उनको भूख और ललक हो जाती है तो वो दूध पीने लगते हैं जो सुधर नहीं पिलाएंगे तो रोने लग जाएंगे। ऐसे नंद की ब्रह्म एक ब्रह्मण नंद महाराज जी ने ऐसा कौन सा काम किया, ऐसा कौन से तीर्थों में गए, ऐसा कौन सा दान किया, कर्म किया, तपस्या की व्रत किया, तीर्थों में स्नान किया, जिसके फल से नंद बाबा बाबा बने, पिता बने, बुद्धि ने किया और उनको लाल लड़ाया, और दशोदा जी ने दशोदा जी का दूध उन्होंने पान किया। दशोदा जी महाभागा और वो भी महाउदर महोदर उसी ममता की वजह है। उस दिन हमने शायद बतलाया था, किसी भी तपस्या से, दान से, व्रत से भगवान को नहीं पाएगा, संसारिक वस्तुओं को कुछ पाया जा सकता है, अर्थ धर्म काम ये ठीक हो सकता है, किसी भी तपस्या से, दान से, व्रत से, बस यहीं तक, इसे ऊपर में चीजें नहीं मिली। मोक्ष भी दान भक्त से नहीं होगा, वो भी अनाशक्ति है और भक्ति उसमें थोड़ी सी मिलनी चाहिए, तो भक्ति के प्रभाव से सहज ही वो पराभक्ति लाभ होती है और उस लाभ होने से बिना भक्ति के संयोग के कोई भी कर्म अपना फल नहीं देते। तो ये परीक्षित महाराज जी आश्चर्य चकित होकर के जब देखा नंद बाबा जब वृक्ष गिर गए, नंद बाबा ने उनकी गांठ खोल दी जो यशोदा जी ने बांध दिया, और कृष्ण खूब जोर से रोने लगे, उनको शांत किया, उनको घर ले गए, कुछ गुलाब किया, प्यार किया, और कहते हैं जरा वो जूती ले आना तो उनकी जूती ले आती। और जबकि सब लोगों ने गोवर्धन धाम को देखा, गोवर्धन में कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ कंगली पर गोवर्धन को धारण किया, तो ब्रज के जितने बुजुर्ग लोग थे, बूढ़े लोग, बुद्धिमान, वो सब नंद बाबा के पास में नंद बैठक में बैठे और बैठ करके विचार किया। ये कृष्ण साधारण लड़का नहीं, गोवर्धन को धारण कर दिया, अब उनकी आंख खुली, एक छोटा साधारण गोवर्धन को धारण कर दिया, ये साधारण बात है। अरे ये तो पहले हम लोग समझे नहीं, उतना तो इसी ने मारा, उतना तो दूसरे किसी ने नहीं मारा, और अभासुर बकासुर ये जितने थे सबको इसी ने मारा, और इसी ने ये गोवर्धन धारण किया। इसलिए यशोदा और नंद को बुला करके समझा दिया जाए, इस बच्चे को अपना बेटा ना समझ करके भगवान समझें, या कोई एक अद्भुत देवता है शक्तिशाली ऐसा समझें, ये नारायण ही की कृपा से इसके घर में आया है, या नारायण ही खुद है। जब गर्गाचार्य ने कहा नारायण समझ, तो ये जरूर ऐसा है। नंद को बुलाया गया और कहा कि देखो अपनी पत्नी को बात मत निषेध कर दो, ये कृष्ण को डांटे डांटते नहीं, उसको भक्सना न करें, गाली गलौज न दें, हाथों को न बांधें, अरे उसको खूब प्यार करें, उसकी आराधना करें, और नंद बाबा अभी मत समझिए कि आपका लड़का है। बहुत तरह से समझाया था नंद बाबा ने, थोड़ा सा हंस दिया, आप लोग इसे ब्रह्म कह रहे हैं, आपकी बुद्धि की बलिहारी है, ये ब्रह्म कैसे हो गए, और यदि ब्रह्म भी है तो अपने घर का ब्रह्म रहे, हमारे घर में लड़के के रूप में आया है, तम तो उसको शासन करेंगे, उसको खिलाएंगे पिलाएंगे, लाड़ करेंगे, कभी शासन करेंगे, क्षमता से हम देखेंगे बिगड़ न जाए। अरे ये जो थोड़ी सी देर हो जाती है और भूख लग जाती है तो रंग नहीं चलता, तो मचलने लगता है और चोरी करता है, हमारे घर में नहीं सत्य धर्म से ये ब्रह्म चोर होता है, और उसको भूख लगती है, हमने सुना है जो ब्रह्म को भूख प्यास नहीं लगती, इसको तो भूख भी लगती है,
प्यास भी लगती है। मक्खन खाने का ये लोभी ब्रह्म को लोभ होता है, और थोड़ी सी बात होने में दांत सड़ करता है, क्रोधित हो जाता है, मुख लाल हो जाता है, खड़िया तोड़ दिया, ब्रह्म बदमाशी करता है, ये ऐसा करता है। ब्रह्म को तो काम क्रोध लो मत मो मास सब ये सब तो ये इसको सब नहीं पूछ सकते। ये ब्रह्म कैसे हुआ, इस तरह से काम करके हंस दिया, अच्छा यदि ब्रह्म भी आए तो कोई बात नहीं है, तो उसको ऐसी शिक्षा दी। बस ऐसा उनका ढक गया थी मात को सिखा। इसी तरह से नंद महाराज ने कंसी को भारी तपस्या की, ऐसा प्यार किया था जिसे कि वो उनके पिता भी और प्रकार से लाभ प्यार कर रहे हैं। और यशोदा जी आज तक जिसको कोई नहीं बांध सका, जिसका अंतर नहीं है बाहर नहीं है, जिसका भीतर नहीं है बाहर नहीं है, ब्रह्मांड के ब्रह्मांड ऐसे ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मांड में उसके एक लोम कूप में कोटि कोटि ऐसे ऐसे ब्रह्मांड विश्व सब, और सबके बाहर में वही उसके भीतर में है, पेट में है या लोम कूप में सब, ऐसे ऐसे ब्रह्मांड कोटि कोटि अगणित ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि सभी लोग, इसलिए उसका बाहर कुछ हो ही नहीं सकता, उसके अंदर ही सब है और सबके अंदर में है, आत्मा के भी साक्षी और परमात्मा के रूप में है, अणुअणु में भी परमाणु में भी वो है, तो इसलिए उसके अंदर में आपको जान नहीं सकता, वो बाहर में भी है सबके और सबके भीतर में भी है, उसका बंधन कैसे होगा, बंधन जिसका बाहर ही नहीं है भीतर ही नहीं है, बंधन कैसे होगा। इसलिए यशोदा जी ने किंतु उसको बांध दिया प्रेम से, इसलिए महाप्रभु यशोदा जी लेकर के गोदी में उसको सोती हैं, सुलाती हैं, तरह तरह की कथाएं कहती हैं और उसका मन हरण करती हैं। तो ऐसी यशोदा जी ने कौन सी तपस्या की, जस जिसके उनका गोदी उन्होंने पान किया, उसी फिर नेम पर लोग बतला रहे हैं कि उन्होंने सहज भाव से कर दिया कि पूर्व जन्म में द्रोण और भरा थे, इन्होंने बहुत काल तक तपस्या की कठोर, ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के बोले कि परमा, तो उन्होंने कहा कि भगवान के प्रति हम लोगों का की परम भक्ति हो, उत्तम भक्ति, बस इतना है। उन्होंने कहा कि वो मस्त ऐसा नहीं, उन्होंने पुत्र हो आप पुत्र के प्रति आपका प्रेम ये नहीं कहा, आप भगवान के प्रति हमारी तमाम भक्ति, और तमाम भक्ति किसको कहते हैं, उसके अंदर में ये सब कुछ है, इसलिए उन्होंने कहा तमाम भक्ति बनाए थे वो मस्त। ब्रह्मा जी यदि कहा जाए ब्रह्मा जी के बल से इनको कृष्ण के प्रति ऐसा बात सब ने स्नेह आया, उन्होंने ऐसा प्रेम किया, तो यह ठीक नहीं कहा, ठीक नहीं, क्यों, जिस चीज को ब्रह्मा ही तो ही नहीं है, जब तक भूरी भाग जमी है जन्म तुम्हारा जन्म जब गोप लेती सतमंग रजो शेतम जीवितम पूर्णम भगवान ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि ओ इन ब्रजवासियों की चरण की धूली हमारे मस्तक पर लग जाए, कहीं जहां कहां कहां भी अन्यत्र भी कहीं भी हमारा जन्म हो जाए, खास पे पौधा लता धूल जो कुछ भी, और गोपियों की चरण की धूली हमारे में ऊपर में लग जाए, गोपियों की चरण की धूली हमारा जीवन साथी, किसी की भी गोपियों की नहीं किसी भी ब्रजवासियों की, ब्रजवासियों की किसी की भी चरण की धूली हमारे ऊपर लग जाए हमारा जीवन। उद्धव जी ने किंतु वर्गीकरण करके बताया ठीक करके नीचे क्या गोपियों की, और इन्होंने क्या कहा किसी भी ब्रजवासी कथम आंग्री कथम किसी भी एक प्रजवासी की चरण की दूरी हमारे सिर पर पड़ जाए हमारे दिन। इसमें कोई भी ब्रजवासी आ जाए तो किसी भी ब्रजवासी की चरण धूलि की वंदना कर रहे हैं और कहा जसोदा जी को यह वर देना जो तुमको कृष्ण के प्रति पुत्र बात्सल्य भाव आए, ये कैसे संभव होगा जिसके पास में है ही नहीं चीज ही नहीं है। इधर से आ जाइए बात्सल्य भाव आ जाइए, बात्सल्य भाव नहीं है ब्रज का कोई भी भाव नहीं है जिसके लिए ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि हमको ये चीज हो जाए। हमारे पास में 5 रुपया नहीं है, 1 पैसा नहीं है और उसको कोटि कोटि रुपया दे दिया, ये कैसे संभव? इसलिए ब्रह्मा जी के पर्ष द्वारा ये सब नहीं। तब हाँ एक भाव है जिसका दर्शन हो सकता है, क्या है? भगवान से भी बड़े भक्त होते हैं। ब्रह्मा जी हमारे संप्रदाय के आदि गुरु हैं, तो हमारे गुरु में इतनी शक्ति नहीं है। अरे दे दोहरा रहा कृष्ण जी, तो ये गुरु जी ब्रह्मा जी गुरु हैं। यदि हमारे गुरु जी से इस प्रार्थना से ऐसा हम पा सकते हैं तो हमारे गुरु जी के परम गुरु जी और उनके परम गुरु जी के परम गुरु जी ये क्या चीज नहीं दे सकते। इसने भगवान के इस भाव को रक्षा करने के लिए मानो इसने पुत्र के लिए, ये भी बात ठीक है। इसलिए कहते हैं जब ब्रह्मा जी की कृपा से ही हुआ, किंतु हां एक बात है और नारद जी नंद और जसोदा कोई साधक जीव नहीं है और साधक जीवों के द्वारा ऐसा प्रेम नहीं है। अधिक से अधिक कोई साधन करेगा तो ब्रज का उनका पड़ोसी होकर के जन्म लेगा और एक वर्ष में जैसे कृष्ण उनके घर में चोरी किया या ब्रह्मा जी के मोहन के समय में पुत्र होकर के हुए, ये सब वास्तव जैसे अस्वाधन है उनके लड़के बने। किंतु नंद वाला जसोदा जी का जैसा होना ये असंभव, ये नहीं। वो नित्य सिद्ध, वो कृष्ण के ही कृष्ण ही है, उस रस का आस्वादन करने के लिए अपने से ही अपना रस आस्वादन। वो बलदेव जी के अक्षर से काय बिहु कहो अथवा उन्हीं के स्वरूप या प्रकाश है और बलदेव जी कृष्ण ही है इसलिए उन्हीं के प्रकाश। इसलिए नंद बाबा बासल वर्ष की प्रधान मूर्ति हैं, उनके अंश गोण और हरा ये दिखलाने के लिए, यहां उन लोगों ने भी कुछ तपस्या करके ऐसा पाया, ये दिखलाने के लिए लोग हताश न हो जो भगवान को पाया नहीं जाएगा बासल वर्ष, इसलिए उनके अंश हैं। उन्होंने तपस्या की, ब्रह्मा जी ने कामस्तु कहा और उसके पास में वही नंदा और जशोदा में वो अपने पूर्ण अंशी में मिल सके उन्होंने बासल वर्ष आस्वादन किया और जब उनकी लीला समाप्त हो गई उसमें से निकल सके अपने धाम में वो चले गए या गोलोक में जाकर के ब्रज में गोप गोपी होकर के बासल वर्ष का आस्वादन। इसी के लिए वो दूसरी बात कह रहे हैं, ये द्रोण और खरा साधक थे, साधन से भगवान नहीं मिलते, इसी के लिए बतलाया नहीं मन गिरंथो न भवो नक्शे अंग संशय प्रसाद अंगले धीरे गोपी जब तक प्राप्त जो मुक्ति का वो मुक्ति का मुक्ति देने का मुक्ति मुक्ति को देने वाले दो अर्थ होंगे, विशेष मुक्ति अतः भक्ति। विशेष भक्ति या विशेष मुक्ति है, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होने का नाम भी विमुक्ति,
विमुक्ति का,
विमुक्ति का स्वरूप में प्रतिष्ठित माने क्या है?
मुक्ति ही तो अन्यथा रूपम
स्वरूपेण दर्शित मुक्ति। कुछ लोग मुक्ति का अर्थ ये समझते हैं जो भगवान में मिल जाने का नाम, ब्रह्म में मिल जाने का नाम। बहुत से ऐसे वैष्णव लोग भी हैं जिन्होंने दीक्षा ले ली है, तिलक माला भी ले ली, महाप्रदर्शन प्रदाय में भी है, किंतु वैष्णवों का संग नहीं किया। और संग होने नहीं होने के कारण केवल ऊपरी भावों को लिया और रहस्य के अंदर में प्रवेश नहीं कर सके। तिलक माला ले लिया, नाम भी करने लगे, किंतु विचारों को नहीं दिया। ऐसे भी हम समझते हैं कि 99 लोग ऐसे ही होंगे, 100 बहुत कम होंगे जो संप्रदाय में आकर के तिलक माला के साथ साथ में भी उनके विचारों को ग्रहण किया। शंकराचार्य जी ने बताया ये जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म ही है, अभी अपने को ये जीव यही उसके गुरु की से आदान प्रदान होगा सत्संग में, अपने तत्व को जान करके ये जब अविद्या दूर हो जाएगी तो वो देखेगा कि मैं ही ब्रह्म, इसी का नाम है। किंतु हमारे श्रीमद् भागवत में और वैष्णव ने चैतन्य महाप्रभु जी ने या किसी भी वैष्णव ने इसका अनुमोदन नहीं, जगत झूठा नहीं है। जगत झूठा है तो साधन इत्यादि सभी कुछ झूठे हो गए, तो गुरु जो कह रहे हैं वो बात भी, शंकराचार्य भी जो कह रहे हैं या उनके संप्रदाय के तो शंकराचार्य झूठे हो गए, उनके गुरु झूठे हो गए, तो वेद पुराण रामायण महाभारत गीता इत्यादि सब कुछ झूठा हो गया, जगत झूठा हो गया, तो उसी में तुम भी है तो सभी झूठे हो गए। ऐसा नहीं, चैतन्य महाप्रभु जी ने या शास्त्र में जगत को झूठा नहीं बताया, तात्कालिक सत्य बताया। जगत अनित्य है, झूठा नहीं। हमारी छाया पर जब झूठी नहीं है, छाया झूठी नहीं है, छाया जो चलती है हमारे साथ में झूठी ऐसी सत्य है,
काया है तब तो छाया
है, काया है और उसकी छाया है उसमें धूप नहीं जाती, काया के साथ में कुछ सादृश्य है तो झूठी कैसी होगी? अनित्य है। ऐसे ये संसार है, मैं तो राम कृष्ण इत्यादि सभी कुछ असत्य हो जाएंगे, हमारा प्रवचन भी असत्य हो जाएगा, सब झूठा हो जाएगा। तो उपदेश गीता में ये किस लिए सब दिया गया या वेदों में उपदेश हो गया, इसलिए यह बात एकदम अधिकांश लोग साधारण सुनने में जरा अच्छा लगता है ना, ये जगत झूठा है, जगत झूठा नहीं है, सत्य है, किंतु तात्कालिक सत्य है, इस चीज को समझ। दूसरी बात, कभी भी जीवात्मा परमात्मा नहीं होता, ब्रह्म नहीं होता, कभी भी किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता है। हाँ, ब्रह्म के समान सुख लाभ कर सकता है, बस इतना ही, मुक्त हो जाए। तो मुक्त माने क्या? ब्रह्म में मिलना नहीं, उस मुक्ति माने अपने स्वरूप में, शुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना, इसका नाम है। यहां पर विमुक्ति दास विशेष रूप से मुक्ति, अर्थात जो मुक्ति देने वाले हैं, जीवों को अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित कराने वाले हैं, जो जीव जाता है ऐसे, जहां तक उत्तम सर्वोत्तम प्रेम है, जो मधुर रस प्रेम तक वो भी स्वरूप संसार में दे सकते हैं, गोपी भाव को भी दे सकते हैं। उन्होंने जो प्रसाद मैंने कृपा की यशोदा के ऊपर में, गोपी मैंने यहां पर यशोदा की, उन पर जैसी कृपा की ब्रह्मा के ऊपर में ऐसी कृपा नहीं की, शंकर को ऐसी कृपा नहीं की, लक्ष्मी जी पर ऐसी नहीं कृपा की, किसी पर भी ऐसी कृपा नहीं की जो यशोदा जी के ऊपर। बिरेंचो, बिरेंचो माने ब्रह्मा जी, जो कि भगवान के नाभि कमल से निकले हैं, गर्भदशाई के पुत्र है, पुत्र होते हुए भी उस कृपा को लाभ ना कर सके और शंकर जी उनके हर हर एक आत्मा होकर के उस कृपा को लाभ नहीं कर सके। सब समय वस्तक्ष पर विराजमान रहने वाली लक्ष्मी जी या चरण को उठने वाली लक्ष्मी जी भी उस कृपा को लाभ नहीं कर सकी जिस कृपा को गोपी। कृपा माने क्या? ममता। यशोदा जी ने ममता के द्वारा कृष्ण की वह सेवा की कि कृष्ण उसके वशीभूत हो गए और किसी के वशीभूत। ब्रह्मा जी के वशीभूत हुए बच्चनों के हरण के बाद में कितनी स्तव स्तुति होने की और कृष्ण ने उनके तरफ में नजर भी नहीं दिया, बस हाथ में कमल लीला कमल घुमा करे और एक बच्चे के सखा के स्तंभ पर हाथ उपेक्षा कर उनकी कोई सुनाई नहीं। प्रसन्न हुए कि नहीं हुए कुछ पता ही नहीं लगा ब्रह्मा को। फिर ब्रह्मा जी अपने आप में स्तव स्तुति करते और शंकर जी का तो अपराध लेते नहीं है किंतु इस प्रकाश उनके वशीभूत ये भाव नहीं देता है। कभी भी किसी भी लीला में न राम लीला में न कहीं विष्णु के और लीला में न ही कृष्ण लीला में वशीभूत नहीं, बल्कि उनके सामने ही गोपियों ने उनके गालों में गुलचे लगा दिए शंकर जी। तो उन्होंने शंकर जी ने समझा ये हमारे ऊपर महती की पाज हो गई, मैं तो ऐसा भी युद्ध नहीं था कि गल्फों में गुर्जा मारे हैं क्योंकि आज हमारे ऊपर में ये बड़ी भारी कृपा बरस गई।
हरिहर एक आत्मा उधर से एक आत्मा
है इसलिए तो यही उन पर कृपा बरस कि उनका पिछवा दिया, यही उनकी बड़ी भारी कृपा हो गई। उनके वशीभूत नहीं होंगे, शंकर जी आए वशीभूत हुए। परशु के की सहायता करने के लिए आए तो उनको कह दे खबरदार ऐसा मत करना, ये उनको कर दिया। ये दुष्ट लोगों के संग में पढ़ करके क्या कर रहे हैं
कृष्णाय कृष्ण नमस्कार।
यंत्रजंतमते समते तपिष्टं दैतायनो गिरहतरया भाव वेतया सर्वोने
इसलिए कृष्ण जितना अपने आप लगा लें उनकी सेवा में वस्तु एक तरफ प्रेम है निष्ठा है किंतु सेवा भावना और ममत्व बहुत अब दास्य दास्य किसको कहते हैं वासना ममत्व भी कुछ कुछ आ गई है और ये रहता है कि ये मेरे प्रभु हैं मैं उनका दास उनकी मैं क्या क्या सेवा सब समय सेवा में सब समय यह सेवा दो प्रकार की होती है ऐश्वर्य और अनुरागमयी और बिना अनुराग ये दो प्रकार और वैकुंठ में और दूसरी जगहों में ऐश्वर्यमयी सेवा होती है और ब्रज में होती है अनुराग की सेवा और इसके बाद में हुआ सख्त गुरु वैष्णव की क्या सेवा भगवान की क्या सेवा क्या सेवा सबसे अब किंकर तरफ हम समझे और अभी से मन लगाए हम कितने तरह के कार्य करते हैं किंतु भगवान के कार्य करने में गुरु वैष्णव की क्या सेवा में हमारा मन है उसको मोड़ करके किया बिना किए कुछ आदमी रह नहीं सकते इसलिए क्यों ना हम करें आप यदि नहीं करेंगे आप नहीं चलेंगे सेवा नहीं कर सब पैर में गठिया हो जाए सब लोग डॉक्टर कहे जे साइकिल चलाओ उससे ये सोच इसको कहते हैं विसंभव विगत ब्रह्म माने ऐश्वर्य ऐश्वर्य बुद्धि हो गई है और हम बराबर हैं एक कोटि के हैं ऐसा समझ करके उसमें सेवा होगी किंतु प्रणय के साथ में तब वो सेवा नहीं कर आएगी वो सख्त भाव है एक सेवा पैर दबा रहा है सेवक और एक कोई सखा गले में हाथ लगा दिया है गले में हाथ लगा करके कोई बात है दोनों से उस व्यक्ति को सुख किस में होगा पैर दबवाने में होगा ना गले में सखे ने हाथ लगा करके और कुछ अरे तरह कह रहा है उसमें होगा सुख किस में होगा सखा के इसलिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना नहीं सुनते और सखाओं के स्तंभ पर हाथ रख करके बड़ा आनंद उनके तरफ में देखते ही नहीं है इसलिए उससे ये ममता बढ़ती जाएगी सेवा की वासना बढ़ती जाएगी अब ये और बढ़ा दो ममत्व अधिक और लाल पाउन भक्तम कारण ये भाव आ जाएगा लाल्य का भाव आएगा पाल्य का भाव आएगा तो ये इसको कह देंगे उससे यहां तक का हमने इसमें
बड़े हो जाते हैं और
इसमें शांत का निष्ठा दास्य के सेवा पाना और सफलता असंकोच सेवा प्रवृत्ति असंकोच और वो लाल लिखाओ एक और इसलिए बड़ा ही मधुर होता है इसके वश में भगवान हो जाते इसमें कहा हम लोग यही पढ़े नेमं ग्रंथो न भयो नश्य पांग संशया प्रसाद ले जब तक प्राप्त मुक्ति का
है।
इसमें वात्सल्य रस के लिए कहा यशोदा जी को जो कृपा लाभ हुई, जयंती को अपना पुत्र होने पर भी वो लाभ मिला, शंकर जी हरिहर एक आत्मा होने पर भी वो उनको प्राप्त हुई, और लक्ष्मी जी उनकी विलासिनी होने पर भी अथवा उनके चरणों की सब समय सेवा में अविरत रहने पर भी वो प्रसाद उनको वो कृपा नहीं। यशोदा जी को क्या कृपा मिली और ब्रह्मा जी को कैसे नहीं मिली, अब थोड़ा सा इस पर हम लोग यशोदा जी को क्या मिली, जो परम मुक्तिदाता है, विशेष करके मुक्ति देने वाले, सब कुछ देने वाले समझ लो, प्रेम में सर्वस्व सबको देने वाले हैं, उनसे ऐसी कृपा यशोदा जी को मिली जो उनको नहीं, वो क्या कृपा मिली, क्या हुई, वात्सल्य का भाव है, सेवा है। जैसे उनके प्रेम में जैसे वशीभूत हो जाते हैं, ऐसे ब्रह्मा शंकर और लक्ष्मी जी में प्रेम से बंधन उन्होंने स्वीकार किया, ये बंधन नहीं बल्कि ये प्रेम, प्रेम की वश्यता ये है। बंधे ये प्रेम वाक्यता की एक तरह से विशेष पाराकाष्ठा है, ब्रह्म इत्यादि में शंकर में और लोगों में ऐसा नहीं देखा जाता, सखाओं में भी ऐसा नहीं देखा जाता, सखा लोग बांध दें ऐसा नहीं, मोटा मोटी सत्य और वास्तव दोनों की सीमा अनुराग है, दोनों अनुराग करते हैं,
बादशाह अनुराग के चरण सीमा तो
किंतु कोई कोई सखा का महाभाव तक स्पष्ट कर लेता है, सुधा सुबोल उज्ज्वल उज्ज्वल इत्यादि पहुंच जाता है, मैया का भी ऐसा हो जाता है, मैया का भी प्रेम कम नहीं है, जो सुधा काम की मौत का मैंने क्या
अनुराग की चरम सीमा,
अनुराग की चरम सीमा में क्या होगा, एक मध्यम अधिकारी अपनी चरम अवस्था तक पहुंच गया तो माने क्या, उत्तम में भी पहुंचा था नहीं किंतु उत्तम तक एकदम सीमा में
सीमा तक,
अब उत्तम ही होने वाला है, सतोष में नहीं होगा, मां बाप की जैसे एकदम बिना में साफने लगी जब हो गाड़ी सोचती जैसे मैं उत्तर गए बोल नहीं पा रहे होश नहीं, उनकी क्या स्थिति होगी, ऐसी अनु अब मैंने पहुंचने वाली है महाभाव में, और सब सुबह इत्यादि पहुंचे जाते हैं उसमें प्रवेश कर जाते हैं, यशोदा जी ने कृष्ण ने मट्टी खाई दूसरी बार आई कुछ बड़े हो गए ना मट्टी खाए, उन्होंने उसमें देखा मुख में छाका और छा करके बीच में खो गए, अनंत ब्रह्मांड देखे सब कुछ उसमें देखा, यहां तक कि अपने को और कृष्ण को भी उसी मुख में देखा, एक तो कृष्ण के मुख में देखा और उस मुख में भी कृष्ण को देखा और अपने को भी देखा, कैसी आश्चर्य हुआ सोचने लगे ये क्या है, सुत सुत कर ये सब मैं ये स्वप्न देख रही हूं कि यथार्थ में देख रही हूं, ये भूत पिशाच लगे मेरे क्या हुआ। किंतु उनके मन में कभी भी ये भावना नहीं आई कि हमारा वाला ब्रह्म है भगवान है, कभी भी एक मिनट के लिए भी आई। अर्जुन को हो गया, अर्जुन देखकर के फरहरी कंपन में लग गए और बोले जैसे मैंने आपको सखा कहा यह अन्याय मैंने किया है, ये मेरा दोस्त हो, आज से मैं आपको सखा और ये नहीं कहूंगा और कभी आपको रथ चलाने के लिए नहीं कहूंगा कि तुम हमारा रथ चलाओ, तुम नहीं कहेंगे, ये हमारा बहुत बड़ा धर्म। इस तरह से फिर भगवान ने जब युग माया के द्वारा उनकी बुद्धि धरती तो फिर हुआ, किंतु इनको हुआ ही नहीं। थोड़ी देर के बाद में घर में ले गई और गैया मंगाकर उसका गोबर और मुख मिलाकर उसके पूंछ में लगाकर और उनको चारों तरफ से लगाया, स्वस्थी का आचरण करवाया और
ब्राह्मण को दान दिया,
वो रक्षा कवच मंत्र इत्यादि मुख में ये रक्षा करें, नाक में ये, कान में ये, इंद्रियों में ये सब, अंगों में ये सब कुछ करने लगे। रात में सोए चांदनी रात, कृष्ण यशोदा जी की गोदी में बाहर नहीं आंगन में सो रहे हैं। कृष्ण मैया से जिद कर रहे हैं, मैया हमें कोई कथा सुना, वो कोई कथा सुना रहे हैं। इतने में कृष्ण की नजर पड़ी चांद पर, अभी कृष्ण के अभी दो दांत आगे के केवल निकले हैं, हैं? दो दांत, और इतना सुंदर उनका मैया के कर रहे हैं और मैया उनकी कथा सुना रही हूं और उनका सुंदर मुखारविंद देख रही हूं। उसमें यशोदा जी के हृदय में कैसी अद्भुत अद्भुत लहरें उतर रही हूं, बात सुंदर रही हूं, कभी तुम मन करती है, कभी गोदी में लेती है, कभी कुछ करती है, यानी सौभाग्य का कोई ठिकाना। ब्रह्मा जी को ऐसा मिला कभी, न शंकर जी को या लक्ष्मी जी को या कम भक्त को ऐसे सदा और लोगों कृष्ण ने अपने ऐसे हाथ की तरह चंद्र की तरफ बाधा दिखला रहे हैं और उनका ध्यान दूध पीने से या कथा सुनने से हट गया। उधर ही अब उसने कहा कि यशोदा जी पूछती है मैया देखा क्या कहिए, तो वो चांद की तरफ अरे मक्खन ले रहा है मक्खन, बस वही जो कुछ कहो बस वही इशारा कर और सुनक गए। सुनकना मैंने सुनक कोई भी कारण नहीं है वो करने लगे और ऐसे ऐसे हाथ मलने लगे। वो सुबह और निराली जो सुधा भी अघाती नहीं है वो देखा, कहते बेटा वो मक्खन नहीं लेना चाहिए, बेटा भैया क्यों नहीं लेना चाहिए, इसमें विष लग गया, कैसे विष लग गया, तो देवता दानव इसको समुद्र मंथन कर रहे थे। बड़े आश्चर्य से सुनने लगे कान लगाकर, छोटा सा मां उनको पता नहीं, अच्छे उनको पता है कि नहीं और सब भूलते हैं और बड़े उत्सुक होकर के मैया को बेटा उनका मामा के घर की बातें सुना रहा है, उनको सब पता है, सभी सुन रहे हैं, उसने उनको याद ही नहीं। वो कह रहे हैं इसको लोग खाते नहीं, मारे खाने योग्य नहीं, क्यों, तो देवता और दानव दोनों मिलकर के समुद्र मन संपर्क अमृत पीने के लिए उसमें अमृत के तो पहले ही निकल गया। अभी मैया क्या हुआ, हूं करने लगे, उन्होंने कहा शंकर जी को बुला लिया, भोले भाले शंकर जी, और उनको वो विश्व जब गलने लगा तो शंकर को दे दिया और शंकर जी ने इसको गले में रख लिया। भैया गले में क्यों रख लिया? तो इसलिए रख लिया कि उनके हृदय में ठाकुर जी है ना, तो विष वहां जाएगा तो उनको जला देगा, उनको तप्त होगा, इसलिए गले में रख लिया। इसलिए उनका नाम अच्छा भैया और तप्त तो क्या होगा। तो इसी तरह से मंथन करते 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 ये माखन का बड़ा फल अंत में लौंदा निकला, गोला का निकला। ये वो जो बीज का पहले जो निकला था उसका छीटा इस पर पड़ गया, इसलिए बीच में वो काला देख रहा है ना, वही बीज है। इसलिए देवता दानों दोनों में से किसी ने नहीं लिया, बेटा चुनती न। ऐसे करते हुए अब शक्ति देते देते जी को नींद नहीं आ रही। कितना सुंदर मुखड़ा, कितना भाव उनके अंदर में वात्सल्य था। यदि सो जाएंगी तो बच्चे की देखभाल कौन करेगा, इसी चिंता में डूब रही और तरह तरह की बातें याद आ रही हैं कुछ ने संबंध में। इतने में नंद बाबा यह रात, अरे अभी तो सोई नहीं तू, ये धीरे से बोली कि बच्चा जग न जाए। और फिर वहां धीरे 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 वहां से उठ करके बातचीत कर कृष्ण के संग, कैसी सो न तो नींद आती है और सो भी कैसे, तो मैं हूं तू सो जाए और फिर आप सो जाइए मैं जग। ऐसे बातचीत करते हुए आप बाल्य की लीला का वर्णन करते हुए दोनों प्यास करते करते सवेरा हो गया 4 बजे। इसी तरह से उनका दिन इतना स्नेह किसको का, ब्रह्मा को ना शंकर को ना, ये सब बात संदेह। इसमें रस इसलिए कहते हैं नेमं ग्रंथ शंकर जी को ऐसा था। शंकर हनुमान ये ब्रह्मा जी आए तो कृष्ण का कुछ सख्त भाव का वो लीलाएं देखी, वो लीलाएं भी इनको दिख नहीं पड़ी, विषम्भ लीलाएं सख्त भाव की भी नहीं देख पड़ी, उनको ये देख पड़ी जैसे इसमें से उसके उसमें निकल गया। अब देखें अब क्या करता है, बच्चनों को चोरी कर लें कर दिया, अब देखेंगे ये क्या करते हैं। और उन्होंने देखा समस्त जितनी लठिया थी उनकी कमलिया थी, जितने बच्चे थे बछड़े थे वो सब कृष्ण बने, सब पहले चतुर्भुज हो गए और चतुर्भुज के बाद में त्रिभुज बन गए और उसके बाद में एक भी लड़का बस वो मुख सुखा हुआ हाथ भी पर चावल और चावल चावल और दही इसका कवल रखे हुए और मुख सुखा चारों तरफ में खोज रहा है, बछड़े किधर गए, बस उनके चरणों में गिरने पर कहा बाल्य रस सखरस का भोग कहां किया। कृष्ण ने इनके तरफ में देखा है, शंकर जी सुनते हैं कि आए, गोपियों का भी शरीर बनाया किंतु गोपियों का अवसर स्पर्धन ये नहीं कर सकते। बालीला के समय भी आए गोकुल में गए, बस दर्शन किया और भोग भक्त मैयानंद को छुपा। मैया के अधिकार की बात है, मैया चाहे तो दर्शन दे चाहे ना अन्न को छिपा दिया, इन्हें उनको भी लक्ष्मी जी के साथ हुआ नहीं, बेगम अभी अपनी तपस्या कर रही उनको ये प्रसाद नहीं दिया। प्रभु का यही हो उत्तम यो उत्तम, उत्तम किसको कहते हैं?
तमो जस्मा देते उत्तम
श्रेष्ठ होता है श्रेष्ठतर
श्रेष्ठ श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम
श्रेष्ठतम को ही उत्तम करो
उत्तर
पहले नहीं तम
वैशिष्ट
तो यहाँ पर
उत्तम कहा किंतु परम उत्तम नहीं कहा, अभी उत्तम चल रहा है इसीलिए उत्तम है। अयोध्या में बैकुंठ में तो है ही नहीं है, और कहीं कहीं कुछ भी है थोड़ा सा, जैसे अयोध्या में कुछ है, अयोध्या में है आधा माना जाता है, दस हाथ वाला माना नहीं जाता, और कौशल्या राम माना जाता है, तो कौशल्या में कुछ ऐसा देखी भावना वो है ना, सात भुजाओं का रूप देखा प्रगटा कौशल्या अधिकारी चतुर्भुज रूपधारी अस्त तिजोरी, और देखा कि चार हाथ हैं और फिर अस्तुति जोड़ दी, जो यशोदा मैया अस्तुति करेंगी उनका मुंह में अंगुली लगा करके ऐसे कर दे, वो आपको स्तुति नहीं, इसलिए मैंने राज से पूछा ये इससे भी उत्तम कुछ हो तो बताओ, उत्तम तो आपने बताया, अब उत्तम बताओ और भी उत्तम, राय कहे कांत भाव प्रेम शास्त्र दशा उन्होंने कहा सर्वशास्त्र बदला का बात करें, और यहां पर कांत भाव को प्रेम शास्त्र साधकता कांत भाव इसको कहते हैं, जगत में कांत भाव नहीं है, बस अपराजित राज्य में ही काम था, सेविकाएं हमारे लिए कांत हैं, ऐसा भाव लेकर जब इनकी रसोमय उपासना करती है, संबंधा मिला से नहीं केवल कमान कमात्मिका होकर, तब उसको कांत भाव कहा जाए। इसमें पहले बतलाए गए समस्त जितने प्रकार की विशेषताएं हैं सब इसमें है, और अपना एक अलग से निष्ठा भी है, सेवा भाव भी है, और विगत संभ ऐश्वर्य भाव इत्यादि दूर कर प्रेममयी ममता भी उनमें है, लालन और सारण भी है, भक्तन भी है, जो सुधा कितनी भक्तना करती
इससे परिपूर्ण तो मक्तन है,
और गोपियों की भक्तनाएं परिपूर्णतम मात्रा में होती है, और इसके अतिरिक्त एक और भाव है जो किसी में नहीं, सदांग दिए करें सेवन, अपने समस्त अंगों और समस्त भावनाओं के द्वारा उसमें भी अपना कोई स्वार्थ नहीं, इस भावना में कांत भाव में आत्मा रमता से लेकर और अंत में भारतीय मधुर भाव तब तक ये विस्तृत राज्य है, कहां से आरंभ हुआ है शांत में आत्मा राम का जहां है वहां से लेकर और प्रेम की पाराकाष्ठा प्रतिया भाव जहां जिसने महाभाव से आरंभ होकर के अभिरूढ़ और चित्त इत्यादि मादन मोदन मोहन समस्त चरम सीमा तक वहां तक ये प्यार इसमें पहले ही ये गोपियां होती हैं, ये पहले ब्रज के अतिरिक्त और कहीं नहीं होगा, कुछ आंशिक भाव आभास दूसरी जगह हो सकता है, इसलिए इस चीज को समझने के लिए
आंख खोल करके सभी अच्छी तरह से देख करके सुनो, क्योंकि यही काम आएगा। साधन में जो मिलेगा वही शास्त्र में मिलेगा। साधन में अभी हम पढ़ते नहीं है उस वस्तु को, अध्ययन नहीं करते हैं, सीखेंगे नहीं, तो साक्षावस्था में कैसे मिलेगा? यदि हम साधन में वो अकालत हमको पास करना है तो हमको साधन में क्या करना पड़ेगा? लॉ कॉलेज में भर्ती होना होगा ना, और उसको विधिवत अध्ययन करना पड़ेगा, तब तो वो सिद्धि में वो होगा। ऐसे ही साधन में हम जो कुछ सीखेंगे और जो कुछ करेंगे सिद्धि में वही। और अभी हम उससे एलूफ रहेंगे तो वो चीज हमको प्राप्त नहीं। और ध्यान के साथ में सुनकर, ये पांच प्रकार की दुकानों पर चीज हैं, पांच दुकानें लगी हुई, अपने अपने सामर्थ्य से और गांठ के सामर्थ्य से, पैसे के सामर्थ्य से आदमी और उचित अनुसार में उन पांचों दुकानों में से किसी एक दुकान पर जाए, माल देखेगा, और जिधर जिसकी रुचि हुई उसी दुकान में जाकर के अपने सामर्थ्य के अनुसार में वस्तु को लेगा। तो इसीलिए इसका वर्णन कर रहे हैं, इनमें से खरीदार है वो देखेंगे कि हमारी दांत में कितना पैसा है, अर्थात तो हमारी श्रद्धा किस किस्म की है। श्रद्धा के ऊपर में सब कुछ निर्भर करता है। श्रद्धानुसार कनिष्ठ मध्यम उत्तम, इसी के ऊपर में निर्भर कर, जिसकी जैसा श्रद्धा है उसी, यही मूल्य है उसका, उसी के अनुसार वो दुकान मिल जाए। जिसके दांत में पैसे नहीं है वो सुनार के दुकान में जाएगा, सोने चांदी के, और हीरा का व्यापारी हीरा की दुकान में वो जाएगा जिसको कुछ जरूरत नहीं। ऐसे ही इसको समझ लो, इसको तीन भागों में विभक्त कर, एक साधारण रति, सामान्य रति, सामान्य रति, एक होता है सामंजस्य रति और एक होती है समर्था। तीन प्रकार की रति, रति मैंने यहां पर क्या समझो, प्रेम, प्रेम मैंने हाई थॉट मन, इसको
समझा के बाद जो भाव है
इसमें भी। अब हम कांत रस का विचार कर, कांत रस में ही विचार कर रहे हैं, इसलिए एक साधारण रति अब जिसको सामान्य रति, और दूसरा हुआ सामंजस्य, और तीसरा हुआ जिसमें साधारण रति, रति किंतु है, इस चीज को मत भूलो, साधारण वो जगत का काम नहीं है,
कृष्ण के प्रति रति है,
कृष्ण के प्रति रति है, कृष्ण के प्रति हो गई है, किंतु साधारण जगत का काम भोगों से युक्त होकर के सरे गले लोहे के समान है, जिसमें मूर्खे चारों तरफ से पकड़ सकते हैं, इसकी कोई बात नहीं है। ये तो अंत तक जहां तक हो, जितना भी विशुद्ध होगा ये काम से परिपूर्ण है, और ये सदा दुखदायी दुखदायी है। जैसे जगत में नल दमयंती का प्रेम और
सावित्री
सावित्री सत्यवान का और किसका, हमारे शास्त्री भी वो ब्राह्मण कुष्ट ब्राह्मण और दत्तात्रेय और नहीं अनुसूया, ये सब प्रसिद्ध है, किंतु यहां तक सब काम है। अनुसुईया जी का भी जब अत्रि ऋषि के प्रति उनका पति भाव है तब तक वो पतिव्रता नहीं है,
चरम पतिव्रता
नहीं है, उनको घूमना पड़ेगा। किंतु उनका यदि यह भाव हो कि अत्रि ऋषि हमारे गुरु हैं, और उनकी कृपा से हम भगवान के चरणों में हमारी प्रीति हो जाएगी, तब तो ये पापी तत्व कर्म के अंतर्गत आ जाएगा ना, ठीक है। अन्यथा अत्रिदृष्टि के प्रति ये रहे कि हमारे पति हैं, तो भगवान जो परम पति उनको छोड़ करके अभी संसारी कभी स्थिति है, इसलिए वो पापी तत्व धर्म ठीक।
तो पार्वती के लिए क्या कहा जाएगा?
पार्वती जी का भी वैसे ही स्मरण, शिव जी को अपना गुरु मान करके और उनके माध्यम से नित्य लीला और अष्ट काव्य लीला इत्यादि का जो चिंतन करती है, इसलिए हम लोगों की गुरु पर्व। ये नंदम्यान थी और
सप्तमी
ये तो साधारण कोटि में, ये तो कोई गिनती में नहीं, शास्त्रकारों ने इनको गिनती में नहीं रखा, ये संसार के चक्कर में ये घूम रहे हैं। इन लोगों को ये लोग तो बस पति लोग जाकर के वहां से फिर भ्रष्ट होकर के चले आए, बस यही पते उनका अपने ज्ञान नहीं हुआ तो फिर आगे कैसे जाए। इसलिए इन लोगों के लिए साधारणी रति नहीं हुई, रति जब होगी जब शुद्ध सब तो यहां पर प्रकटित होगा और वो कृष्ण भाव में विभावित होगी तब वो रति होगी। तो क्या जब तक कृष्ण को नहीं देखा था तब तक उसकी प्रति उसकी रति स्वच्छ मानी जाए, स्वच्छ है। कृष्ण को देखते ही रति कुछ विभावित थी, कृष्ण ने उसको सुंदर बनाया, कंस के यहां इतना दिन तक सेवा करती थी किंतु किसी के प्रति उसकी लालसा नहीं हुई, जो पति के रूप में हमारा या कोई किसी से प्रेम नाता संबंध ये सब कुछ नहीं, निर्लेप रूप में उनके सभा में जाती, उनको वो दे आती, चंदन इत्यादि तिलक लगा देती और भी लंगड़ी की टुकड़ी टुकड़ी उसको भी कोई जरूरत नहीं। कृष्ण को देखा, कृष्ण ने उसको सुंदर बनाया, उसकी साधारणी रति कृष्ण के प्रति विभाव। साधारणी किस लिए कहा गया? जब तक उसमें संभोग की या काम की इच्छा है बस वहीं तक वो रहेगी, और जहां वो काम इच्छा कम हो गई है तो रति भी अंत में शांत हो जाएगी, वो दूर हो जाएगी। कृष्ण को जब देखा तब तक उसमें हुई कृष्ण से मिले, और कृष्ण जब चले गए ना तो फिर उसके रति का कोई उल्लेख ही नहीं, बस चीज। इसलिए जब तक वो अभिलाषा रहती है तब तक वो उत्तेजित रहती है, कुछ मैंने काम करती है और उसके बाद में इच्छा बंद हो गई, शांत हो गई, बस उसके लिए न कभी रह होगा न कि स्थायी गति है, वो आकस्मिक उदिति और आकस्मिक, इसलिए इसको साधारण। किंतु रति है कृष्ण के प्रति और किसी के प्रति नहीं, अनन्य है, इसलिए इसको रति में ले लिया साधारण।
और कोई उल्लेख नहीं मिलता है कि वो एक ही बार
बस
इसके बाद में द्वारका में बताया तो जरूर
दिया होगा, इसीलिए उसकी जो प्रीति है असाधारणी है, अतः सामयिक की बस समाप्त हो और स्वास्थ्यमयी है। प्रेम में जहां स्वार्थ है वहां पर प्रीति नहीं है, प्रेम नहीं है, वो रति नहीं चाह रहे, इसलिए बस हम और समंजसा रखें। ये द्वारकापुर की महेशी रति उनकी रति है, सुखरति भी हो गई, स्थायी भाव भी है उनका, ऐसा नहीं कि अभी उदित हुई और फिर शांत हो गई, वो स्थायी है। और उसने कभी कभी कृष्ण से मिलने की इच्छा होती है किंतु मर्यादा से बधी हुई रहती है, ये इसमें है। रति के मुंह में कुछ सात भोग की कामना, लोक मर्यादा और धर्म की सीमा पार नहीं कर सकती, इसलिए इसको समंजसा।
क्या लोक मर्यादा इनकी जो रति होती है लोक मर्यादा और धर्म की सीमा पार न हो जाए, बस धर्म की मर्यादा दोनों से कभी भी किसी के प्राचीन में कम
कर
बस विवाह से उत्पन्न होती है, विवाह से उत्पन्न होती है, इसलिए विवाह की मर्यादा से ये बनती रहती है, इसलिए ये समंजसा है। जो साधारण रति है वो गाड़ी कभी नहीं होगी और स्थायी नहीं होगी, उसका ये लक्षण है साधारणी का। क्या मतलब है
स्थायी भी नहीं होगा गाड़ी भी नहीं होगा,
कभी गाड़ी नहीं होगी और स्थायी भी नहीं होगी। और समंजसा भी क्या है स्थायी भी है और कुछ गाड़ी भी हुई है किंतु भवन नहीं हुई है, तरफ जैसा नहीं वो दिखता है विश्राम घाट में सबसे अच्छी मिठाई
पेड़ा
अभी पूर्जा में नहीं हुई उसकी अभी रबड़ी बनी है, उसमें कुछ कुछ अभी दौड़ता है। ये लोक मर्यादा इसमें और विवाह के बंधन से मर्यादित नहीं होती, ये उसको पार करके एकदम जहां तक ये चली जा सकती है वहां तक ये चली जाए। गोपियों का ये समर्थ था कृष्ण को प्रतिरूप करने में, ये समर्थ है उसमें समंजक होगी कि नहीं होगी, और उसमें तो एकदम है जो उसके बस
साधारण में अपने स्वसुख की उपासना और समंजसा में तदगत भावना और समर्था में कोई सेवा समस्त सेवाओं को उल्लंघन करके
आप इसको उदान दे के समझो। समस्त द्रव्यों में मणि श्रेष्ठ होती है, मणि है साधारण प्रेम साधारण रूप और चिंतामणि है समंजसा और कौस्तुम मणि माना गया गोपियों की समर्था। और इसमें इसमें भी विचार किया गया, ये भी दो प्रकार की मधुर रस भी कांता भाव भी दो प्रकार की, किंतु लक्ष्य द्वारा नहीं है। कांताएं भी कही जाती है, ये एक ब्रज की कांता और एक पूरी की पूर्व की कांता मन करता, किंतु कभी विचार यदि किया जाए पार्थिया के अपने तो सब कांता नहीं चाहती पक्षीय भाव मधु कहा तो जाता है किंतु यथार्थ में नहीं। अब वो स्वकिया और स्वकिया विवाह इत्यादि के द्वारा पतिभाव युक्त होकर के सेवा की भावना ये हुआ स्वकीय। और परकीय होता है दो प्रकार, एक कन्या का एक परोरा एक ही कन्या का माने अनुरा और दूसरा हुआ करोड़। एक और भी इसमें है स्वकीय भी है प्रज में, स्वकीय वह भाव है जो कृष्ण को पति के रूप में मानती हैं किंतु गांधर्व विवाह इत्यादि के द्वारा जो कि कात्यायनी की पूजा करने वाली जो विशेष रूप से थी पूरी जो कन्याकाएं थी पीछे से वो अपने को मानते हैं कि कृष्ण से हमारा विवाह हुआ गांधर्व विवाह। और परोहा कौन सी है ललिता विशाखा चित्रा इत्यादि रूप मंजरी ये सब जो हैं ये परोहा है, इनका दूसरी जगह में कृष्ण से विवाह न होकर के दूसरे से विवाह ये जब था खत्म इस भाव इसी को कर दिया करते हैं। इसी में इनका लक्ष्य यहीं से हो, इसी में परिपूर्ण मात्रा में संपूर्ण रत्न में इसी के लिए या करें, इसी के लिए आगे बतलाएंगे। नारायण सीओ अंग इसके लिए उदाहरण थे अपने कथन के, द्वारका वाले को छोड़ दिया, साधारणी को भी छोड़ दिया, और इसमें भी सखी को छोड़ दिया,
सखियों छोड़ दिया,
सखियों को भी न सखी माने उनको लेंगे
रोज बने काटता है,
हाँ वो उनको ले लेंगे, उनको लेते हुए चले,
पूर के सखियों को छोड़ दिया
है,
पूर दर का भी संख्या छोड़ दी, वो सबको
यहां पर अनुभव और प्रौढ़ दोनों को लिया और उनको भी लिया लेकर के, और उसमें उदाहरण जो दे रहे हैं किंतु प्रिय नर्म शक्तियों के लिए दे रहे हैं, और उसमें जो सबसे श्रेष्ठ आए उसके लिए दे रहे हैं, यहां उन लोगों के लिए दे रहे हैं, उन गोपियों के लिए दे रहे हैं, यहां पर सखी नहीं, नित्य सखी भी नहीं,
प्राण
सखी भी नहीं, प्रिय और
प्रिय नर्म शक्ति,
किंतु वो लोग भी हैं, लोग सभी नारायण सीओ नितांत रते प्रसाद संजोषिता नलिंदो कवे अष्टभुज दंड गृही सकंठ लब्धा श्रीशान जगद्वार, जो सोदा जी के प्रति कृपा का वर्णन पहले नेमो ग्रंथों ने इत्यादि में किया, सखाओं के प्रति कृपा का ये वर्णन, अब यहां पर उन गोपियों की मधुर रस वाली कांता गोपियों का यहां पर कर है। न अयम स्त्रियो हे अम हे स्त्री, ये कौन कह रहा है, कौन कह
रहा है, उद्धव जी कह रहे हैं,
उद्धव जी उनकी महिमा वर्णन कर रहे हैं,
गोपियों के
महिमा वर्णन कर रहे हैं, उनके सामने महिमा वर्णन करते अखाते नहीं, ये आशा महोच्चारण लेने के पहले वाला है। नायन सीओ अंग अपने आप गदगद होकर के उनकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं, नायन सीओ नितांत रहते प्रसाद, नितांत रहते जो लक्ष्मी जी हैं, श्रिया श्रिया है, श्रिया
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 बहुत बहुत यहां पर बैकुंठ में भी तीन लक्ष्मी,
श्री भूदेवी श्री भूलीला
लीला शक्ति और
श्री,
ये तीनों लक्ष्मी
अनिन्द्र भाग
तो और कपड़ा है पूर्व की महिलाएं हैं उनको भी लक्ष्मी कहा
जाता
है, उस प्रसाद को कृष्ण ये प्राप्त नहीं हो सकता, लक्ष्मी नितान का अर्थ है सब समय उनके अंगों की सेवा में निरत रहने वाली, चाहे वो पायक में यहां पर दस्ताक्षर पर लेकर के लौटे अथवा उनके पक्ष पर विराज करते सब समय उनके अंगों में रत है, दस्ताक्षर में दक्षिण रुमावली के रूप में या जिस रूप में लक्ष्मी जी को भी वो प्रसाद नहीं मिला, स्वजोषिता स्वर मैंने यहां पर बैकुंठ भी बतलाया, और स्वर मैंने स्पष्ट ही है, स्वर मैंने यहां पर बैकुंठ जोशिता बैकुंठ की जो लक्ष्मिया लक्ष्मी नलिन बंध रुचा नलिन मने कमल नलिन गंध नलिन के समान गंध रुचा मने कांति उनमें सुगंध है कैसी लक्ष्मियों में कमल सी और उनमें गंध तो है कमल जैसा और कांति कैसी है कमल जैसी। कैसे कमल होता है सादा नहीं मैंने कुछ गुलाबी था गुलाबी था अत्यंत सुंदर और कैसा कोमल कैसा कमल की भांति कोमल मृदु मनोहर सबको आकर्षित करने वाला हवा तक की आकर्षित
कमल के एक से पंद्री एक फूल के द्वारा घूमने में जितना समय होता है
तो ये
कमल होता है
ऐसा है। लक्ष्मी ये लक्ष्मी है शांति से अपने आप निकलती है। यहाँ तक तो सेंट इतर लगाना पड़ता है वहां पर सेंट इतर की कोई जरूरत नहीं है खुशबू अपने आप आती रहती है। जब उन्होंने ही कृष्ण की ऐसी कृपा क्यों नहीं याद की तो कुतो अन्य संसार की और दूसरी या देवताओं की दूसरी जो स्त्रियां अप्सराएं इत्यादि हैं इनकी तो बात ही क्या उनको तो पेंसिल पहले ही कर इसमें सब देवीता इसको भी लिया जा सकता है जो देवलोक में हमारे हर हरग्रीव हैं बामन जी हैं और जिसमें अवतार हैं उनकी जो लक्ष्मी है उनकी भी इसमें हुआ पहला एक अन्य ये साधारण जो सुंदरी से सुंदरी स्त्रियां हैं जगत की दूसरी देवताओं की स्त्रियां तीसरी अस्पराएं चौथी देव विष्णु की जो लक्ष्मियां और फिर नारायण के पास न रहने वाली लक्ष्मियां इनको तो बात ही क्या फिर वहां द्वारकापुरी की महिलाएं लक्ष्मियां श्री शतनिंद पट्ट महिष प्रभु खेलती लक्ष्मी जी से भी लाखों कोटि सुंदर और महिमा में ये पड़ी है कौन सप्तधामा इत्यादि उनको भी वो कृपा नहीं मिली कृष्ण की यात्रिका उसी के लिए बतला है रासोत्सवे अश्व भुजदंड गृही तपंथ रास के समय में नित्य करते 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 कृष्ण अधीर होकर के उनकी कृपा मानते हुए कृपा की वंचा करते और उनके गले में अपनी सुंदर सुगंधी सपाकृति बाहु को लगा कहा ये उनके गले में डालेंगे ऐसा ना कर सकते कृष्ण ने ही उनकी कृपा के लिए ऐसा अपना ऐसा और कहीं कहीं पर हमारे गोस्वामियों के श्लोकों में ऐसा है कि आप प्रसिद्ध आप कृपा करें हमारे ऊपर अफरितुरपी प्रत्यास प्रसाद दिव्यान की राधिका जो देवी है उनकी कटाक्ष की कृपा करने के लिए कटाक्ष से भी कृपा करने इसके लिए अनुबंध हो करके माने व्रत धारण करके प्रतिदिन राधा कुंड में वास करते हुए स्नान करके उनके नाम का मंत्र जाते राधा कुंड
संत में जगति विमल नीरे तीर्थ रूपे प्रशस्तुसांगी स्नान वराधे इति विनय बचवी प्रार्थना कृष्ण कृष्ण
इस तरह से वो प्रार्थना कर रहे हैं कृष्ण तुम हमें छोड़कर के मत जाना है इस भावना से लब्धाशीशान लब्धाशीशान मैंने इस आशीष को लाभ किया कौन गोपियों और इसको दूसरे रूप में भी कर सकते हैं जिस कृष्ण ने जिस चीज की अभिलाषा की किस लिए उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं वो कृष्ण ने उस आशीष को उनसे प्राप्त किया लब्धाशीषण इस रूप में भी कर सकते हैं मनोरथ को पूर्ण कर दिया कृष्ण के मनोरथ इसी में सम्यक रूप में सार वासना कृष्ण की श्रृंखला के रूप में काम करती है राशि सर्वोत्तम लीला संसार बद्ध श्रृंखला
संसार में सम्यक रूप से सार जो है वासना,
प्रेम वासना
कृष्ण की, प्रेम को उनसे प्राप्त करेंगे गोपियों से, हमारी अभिलाषा पूर्ण हो, इसलिए ये सम्यक रूप से सार वासना कृष्ण की है, उस वासना को पूर्ण कौन करती है, ये गोपियां करती है, इसलिए इसको संसार वासना कहा गया, इसलिए इसको कोई भी नहीं प्राप्त कर सका। फिर एक दूसरा उदाहरण देते हैं, इसलिए कहते हैं, जैसे राधिका जी के सौंदर्य के लिए बदलाता है रूप गोस्वामी, परित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौरवति मुख प्रभा परास्त कोटि सार बिंदु, इनका परित सुवर्ण चंपक, ये तीन प्रकार की उपमा, परित राजा जी का अंग कैसा है, परित के समान अत्यंत सुंदर पीत वर्ण है, किंतु इसमें आग है, परित है
जड़
और जड़, इसमें सुगंध नहीं है, इसलिए इसको बाईपास कर दिया, परित
सुवर्ण,
सुवर्ण स्थिर है, वो जल्दी से विद्युत की भांति चमक करके नष्ट नहीं हो जाता है, तो स्थिर, किंतु इसमें अपना कोई सुगंध नहीं है, जड़ भी
कोमलता नहीं है
और कोमलता भी नहीं है, मृदुता नहीं है, माधुर्य नहीं है, इसलिए इसको भी छोड़। अब तीसरा क्या आ जाए, चंपक पुष्प, चंपक कैसा होता है, चंपक देखा बड़ा पीला, बहुत सुंदर मृदु पीला और बहुत मधु गंध और सुंदर कोमल मृदु होता है, और पीला भी होता है,
सुकुमार जो है
सब कुछ है, किंतु है कशिश में यही एक है, किंतु इसमें समस्त कुछ है, इसलिए तीनों मिला करके भी पूरा नहीं कर सका, कोई उपमा ही नहीं उसके लिए, चंपक, इसलिए एक एक कह करके भी पूरा नहीं होता, वे कहते हैं तो
श्रेष्ठ वस्तु को लिया,
उत्तरोत्तर बढ़ता चला जा रहा, फिर अंत में चंद्र को दे दिया, उनका मुखमंडल कैसा है,
सरद
इंद्र समान अत्यंत सुंदर, उसमें चेतनता भी है, चेतनता भी है, हर्षप्रद भी है, उसमें सब कुछ है, उसमें अमृत भी है, इसलिए उस थोड़ी सी क्षमता पर, किंतु वो भी पूर्ण क्षमता नहीं कर सकता, तासाम आदिभूत सौरे सौरी स्वयमान मुखाम बुजा पीतांबर धर सगरी साक्षा मनमथ, इस रूप को देखने का किसी को अधिकार नहीं है, न द्वारका वाली को, न वैकुंठ वाली को, ये सब जीतती है, किसी को अधिकार नहीं, ये रूप कौन देखेगा, मनमथ केवल गोपियां ही दर्शन, और कोई दर्शन नहीं है, नहीं अधिकार, जिसके अंदर में प्रेम सर्वोच्च स्थिति में असीम रूप से वर्तमान, जिसमें महाभाव से आरंभ करके ऊपर वाला हो, वो लोग इस रूप को दर्शन कर सकते हैं, और ये प्रकट ही नहीं करें। एक व्यापारी है कपड़े का, जब दुकान में जाते हैं तो हम कहते हैं कि भैया हमको एक साड़ी दिखलाओ, तो वो पहले घटिया किस्म की दिखलाएगा और पांच लाइट जला देगा चक 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 करके, और कहेगा ये यहां से ही हमने मंगाया, बंबई की है, कोई कहेगा
रास्ते
से, कोई दिवकपुर से दिखलाएगा, पसंद अच्छा, और बस यही था, नहीं नहीं हमारे पास और, तो और एक दिखलाया, फिर एक और दिखलाया, अंत में दिखलाता दिखलाता जब भी उसे अंतिम दिखला दिए ना,
तब से मन नहीं भरता तो पुरानी वाली का सबसे रेट लगेगा। ये कहा जा कि ये सबसे अधिक श्रेष्ठ है पुरानी वाली, और किसी न किसी प्रकार से उसका मन बजा कर और फंसा नीति देता है, फंसा ही देगा यदि चतुर्थ होगा। एक एक करते उद्धव जी को ब्रज में भेजा, उद्धव जी गोपियों को संवाद दे रहे हैं, पहले घटिया संदेश का, इसके बाद में बढ़िया संदेश का, उसके बाद में उससे भी अच्छा था, गोपियों को कोई भी मन नहीं भाया। अंत में कहा कि हमारे पास में कृष्ण के बहुत से संदेश हैं, अच्छा आप सुनिए। तो इसी तरह से और उसी तरह से यहां पर ये सबसे जो सुंदर अंतिम रूप जो मनमत मनमत है, ये गोपियों के लिए ही क्यों संभव, दूसरों के लिए वो दर्शन कितना बजा
सवा सात
सवा सात। तो पाठा मादी भूत शौरी, शौरी किस लिए कहा, गोपियां ये सुखदेव जी कहा है ना, सुखदेव गोस्वामी पर, सुखदेव गोस्वामी को बड़ा क्रोध आया कृष्ण पर, गोपियों के पक्षधर है ना जी, गोपियों को इतना तरसाया और इतना भ्रमाया, इनको व्याकुल कर दिया, न घात घर का रखा न घात का, और इतना रुलाया इसलिए इनका मन बड़ा खराब हो गया। कृष्ण भगवान ये तुम बड़े निश्चित, ये छत्री कुल में जन्म लेने से ही ऐसा हो सकता है, इसलिए निश्चित में तुम शौरी पुत्र है, इसलिए कठोरता के लिए उनको कुछ क्रोध हो गया, आग हुआ और आग होकर के तब उन्होंने ऐसी कठोर भाषा का प्रयोग, तुम ब्रज के नंद नंदन नहीं, तुम जसोदा नंदन नहीं हो सकते, जसोदा तो बड़ी प्रेम से तीजी रहती, वो बड़ी दयालु है, नंद बाबा बड़े दयालु, इसलिए कभी भी आप वो पुत्र गोविंद नंदन कभी नहीं हो सकते, आप निश्चित ही शौरी। तब शौरी जी ने क्या किया, कुछ लज्जित से होते हुए, कुछ मुस्कुराते से होते हुए, मानो मेरी गलती हो गई, मैं इस गलती को तुम लोग तुमने दिव्य सुंदर धारण किया जो भी आज तक कभी नहीं किया, मनमत को भी मनमत करने वाले ऐसे स्मयमान मुख अंबुज है, किंतु कैसा है वो
स्मयमान लज्जा
अब फूट रहा है, फूल
खिल रहा है,
अभी खिल रहा पूरा खिला नहीं, अभी कली से थोड़ा सा भी संकुचित किंतु फूटने वाला है, मन संकुचित कुछ पुष्ट, ऐसे कृष्ण कुछ मुस्कुराते हुए पीतांबर को धारण करते हुए सभी सभी मैंने क्यों कहा
माला
माल धारण करने के लिए नहीं, इसलिए कि वही माला जिन गोपियों ने पहनाई थी, राधा जी का उच्छिष्ट माला, उनकी उच्छिष्ट माला राधा जी और गोपियों ने कृष्ण को पहनाया उसी माला को लेकर, नहीं मैं तुम्हारे ही दिन हूं, तुम्हारे दिन ही माला को मैं धारण करता, मैं तुम लोगों के प्रति अपराधी नहीं, ऐसे लोगों को कहा जाता है दुष्ट नारायण। किसको फर्क है, सब लक्षण हैं जो कहीं और गए, और कभी समाधिष्ट बाचा मानेगा नहीं, हमने कोई अपराध नहीं, मैं तो बहु सर्वस्थित है, अभी आपसे ही मिलने के लिए आ रहा, ऐसी भावना से यदि होगा कोई तो उसको दृष्ट, इसलिए यहां पर दृष्ट हंस भी रहे, अरे लज्जा होनी चाहिए ना उनको।